आज हम 13वें और 14वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरअहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दयालु होता है और सबका मित्र होता है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता और जो मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त है, जो सुख और दुख दोनों में समान भावना रखता है, जो सहिष्णु है, सहनशील है और हमेशा आत्मतुष्ट रहता है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है और जो निश्चय के साथ मेरे में अर्थात कृष्ण में अपनी बुद्धि और मन को स्थिर करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद इसका टीका करते हैं, तात्पर्य बताते हैं। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दो श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त वो है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और वह किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, वह किसी को अपना शत्रु नहीं मानता और वह सोचता है कि अगर कोई मेरे प्रति शत्रुता का व्यवहार कर भी रहा है तो जरूर ये मेरे पिछले बुरे कर्मों के कारण है, अतः मुझे विरोध करना ठीक नहीं है। अगर कोई मेरे से बुरा व्यवहार कर भी रहा है तो मैं सहन कर लूंगा। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रार्थना में इसका वर्णन आता है। तत्ते अनुकंपसु समीक्षमानौ भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। जब भी कोई भक्त मुसीबत में आता है तो सोचता है ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मुझे बुरे कर्मों के अनुसार इससे कई गुना ज़्यादा कष्ट भुगतना चाहिए था, ये तो भगवान की कृपा है कि जितना मुझे कष्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा, सिर्फ थोड़ा ही मिल रहा है, भगवान की कृपा के कारण मेरा कष्ट बहुत कम हो गया है। इसलिए बहुत कष्ट आने पर भी भक्त शांत बने रहते हैं और धीर बने रहते हैं और वो हर एक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दया रखते हैं। निर्मम शब्द का उपयोग किया है। निर्मम का अर्थ है भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं देता, वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और इसीलिए वो शरीर से आने वाले दुखों से विचलित नहीं होता, वो मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है, वह सुख और दुख सब में समान भावना रखता है, वह सहनशील होता है और भगवान की कृपा से जो आसानी से मिल जाए उसमें संतुष्ट होता है। वह ऐसी कोई चीज़ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो बहुत मुश्किल हो, कठिनाई हो या तकलीफ हो प्राप्त करने में, अतएव उसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि जो उसके गुरु ने आज्ञा दी है वो अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार अटल बना रहता है, उसकी इंद्रियां भी वश में होती हैं, वो झूठे तर्क में विचलित नहीं होता, वो पूर्णतया उसको कोई भक्ति से हिला नहीं सकता, सो दृढ़ निश्चय होता है कि कृष्ण भगवान है, मुझे उनकी सेवा करनी है, वो पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ, बस मुझे और कोई चिंता नहीं है। इन समस्त गुणों के कारण उसका मन और बुद्धि परमेश्वर भगवान कृष्ण पर स्थिर रहता है। भक्ति का ऐसा आदर्श मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। लेकिन भक्त भक्ति के नियम का पालन करते हुए ऐसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उनको अति प्रिय है। ऐसा भक्त जिसके अंदर ये सारे ऊपर बताए हुए लक्षण हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय बन जाता है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन समाज की ओर से मैं आप सबका इस रविवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर सप्ताह में एक दिन भगवान की कथाओं को सुनने में और उनके नाम संकीर्तन में एकत्रित होकर आध्यात्मिक प्रगति कर सके। यह मानव जीवन का परम कर्तव्य है कि अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना, जिससे कि जीवन के अंत में हम भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। ये जीवन एक यात्रा है और यात्रा की सफलता इसमें है कि अंते नारायण स्मृति, अंत समय भगवान नारायण या भगवान कृष्ण को याद कर सके। और वो तभी संभव है जब हम वैष्णवों के संग में रहते हैं और अपने मन को हरि कथा सुनने में और अपनी जीवा से हरि नाम गान करने में लगे रहते हैं। इस्कॉन पूना के भक्तगण बहुत विशेष हैं। आज मैं सोच रहा था, मुझे भक्त बता रहे थे, क्योंकि सवेरे से काफ़ी बरसात हो रही है तो शायद ज़्यादा लोग नहीं होंगे, शायद 100 या 200 भक्त आएंगे, और 1 बजे तक ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे 1:15 या 1:30 बजने लगे तो फिर से पूरा हॉल भर गया। इससे पता चलता है कि कोई भी भौतिक स्थिति, कोई भी तकलीफ भक्त को भगवान के पास जाने से रोक नहीं सकती। आप सबके अंदर ये एक उत्साह है जो कि भक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जो व्यक्ति उत्साही होता है उसको कोई भी भौतिक परिस्थिति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। ये उत्साह हमें बढ़ाते रहना चाहिए और धीरे धीरे उस स्तर पर आना चाहिए कि हम सदैव भगवान श्याम सुंदर के चरणों का स्मरण करते रहें और उनकी सेवा में संलग्न रहें हर क्षण हर समय। उत्साह के लिए एक बहुत सुंदर कहानी है, कैसे हमें कृष्ण का नाम लेने के लिए उत्साही होना चाहिए, कैसे हमें कृष्ण के भक्तों की सेवा करने के लिए उत्साही होना चाहिए, कैसे हमें कथा सुनने के लिए उत्साही होना चाहिए, या पुस्तक वितरण करने के लिए उत्साही होना चाहिए, या प्रसाद खाने के लिए उत्साही होना चाहिए। इसका एक उदाहरण है, एक भक्त के जीवन में एक महान वैष्णव भक्त हुए हैं जिनका नाम है बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर महान वैष्णव हैं, उन्होंने किताब लिखी है कृष्ण करणामृत। ये किताब बहुत ही ऊंचे स्तर की है और चैतन्य महाप्रभु इस पुस्तक को पढ़ते थे। बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण भक्ति में आने से पहले एक संसारी व्यक्ति थे और संसार के सुखों में बड़ा आनंद लेते थे, यहाँ तक कि वो विवाहित थे और उससे भी संतुष्ट नहीं थे। अपने पारिवारिक सुख से ज़्यादा वो रोज़ एक वेश्या से मिलने जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनको जाने में देर हो गई, अंधेरा हो गया, वो वेश्या से मिलने जाते थे, एक नौका में बैठ के नदी पार करने थे और नदी पार करके दूसरी ओर नदी के उस वेश्या के घर में जाते जो कि ऊपर था। तो इस समय उनको जाना था और अंधेरा हो गया था, कोई नाव वाला जाने को तैयार नहीं था, अंधेरे के कारण। तो बिल्लो मंगल ठाकुर, उन्होंने देखा कोई चीज तैर रही है पानी में, अंधेरे में दिख नहीं रहा था, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के किसी तरीके से नदी पार करके पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उस दिन उस वेश्या ने दरवाजा भी बंद कर दिया था, क्योंकि रात हो गई थी, उसको लगा कि अब नहीं आएंगे। तो उन्होंने देखा कि अब ऊपर जाने का कोई तरीका नहीं है, एक रस्सी दिखाई पड़ी, तो रस्सी को पकड़ के ऊपर खिड़की से अंदर आ गए। तो उस विषय ने देखा तो वो इतनी रात बीत गई, इतने अंधेरे में आप आए कैसे, इस समय तो कोई नाव भी नहीं चलती और आप ऊपर कैसे चढ़े। तो बिल्लो मंगल ठाकुर ने बोला, ये देखो कुछ तैर रहा था, इसको पकड़ के, और ये रस्सी को पकड़ा मैंने, तो देखे वो जिसको पकड़ के आए थे एक मृत लाश थी, डेड बॉडी, उसको पकड़कर नदी पार कर ली, और जिसको रस्सी समझ रहे थे वो एक काला सांप था, जहरीला सांप, प्लास्टिक का नहीं, असली सांप। तब उस विषय ने, वो विषय वास्तव में वो भी पिछले जन्म में वैष्णवी थी, चिंतामणि उसका नाम था, ये भगवान के इंतजाम था ये पूरी लीला का। उस विषय ने उनसे कहा कि तुम मेरे शरीर का भोग करने के लिए एक इतने तकलीफ लेकर आए, एक सांप की सहायता से ऊपर चढ़े, तुम्हारा इतना उत्साह इस नाशवान शरीर को भोगने के लिए, जो कि दुख का कारण है, जो सुख कुछ क्षणों का लिए है उसके लिए तुम इतना कष्ट उठा रहे हो, अगर तुमने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतना कष्ट उठाया होता तो तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाती। जैसे बिल्लो मंगल ठाकुर ने सुना, बस उनकी पुरानी भक्ति जागृत हो गई जो पूर्व जन्म से थी, और वो तुरंत निकल पड़े भगवान की खोज में, वृंदावन की ओर। तो श्रील प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं उत्साह के लिए, कि भक्त को ऐसा उत्साह होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। कष्ट जरूर आएंगे, आज के श्लोक में हमने भक्तों के लक्षण पढ़े। भक्त वो है जो हर स्थिति में श्याम सुंदर के चरणों को टाइटली पकड़ के रखे। भक्त वो है जो हर स्थिति में कभी भूले नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूं, मेरे रक्षक कृष्ण हैं, मेरे पालन करने वाले कृष्ण हैं, मुझे किस बात का डर। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, जब कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण मेरा पालन कर रहे हैं, तो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। और अगर मेरे जीवन में विपत्ति आ रही है, मेरे जीवन में गरीबी आ रही है, मेरे जीवन में बीमारी आ रही है, मेरे जीवन में दुख और बुढ़ापा और मृत्यु आ रही है, तो वो भी उन कृष्ण की कृपा का एक रूप है। जैसे प्रसाद में कोई आइटम्स होते हैं बहुत मीठे होते हैं, लड्डू, खीर, बासुंदी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब बन रहा है अभी और कोई कोई चीज़ें होती हैं जो थोड़ी तीखी होती है, चटनी या सब्जी। तो एक भक्त दोनों प्रकार के आइटम्स लेना चाहता है। ऐसी भगवान की कृपा दो प्रकार की होती है, एक होता है जब सब कुछ सुख आता है, सब कुछ कंफर्टेबल होता है, परिवार में कोई तकलीफ नहीं, स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी दृष्टि ठीक है, 20/20 विजन, बिना चश्मे के आप देख रहे हैं, और आपके बिजनेस ठीक चल रहा है, घर वाले झगड़ नहीं रहे, खाली हफ्ते में एक दिन छोड़ के हफ्ते में एक दिन तो सभी झगड़ते हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। लेकिन कभी कभी खराब स्थिति आती है कि बिजनेस फेल हो रहा है और बच्चों का स्वास्थ्य रोज खराब हो रहा है, स्पेशली आजकल के मौसम में, और बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे, तब वो भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा में भेद नहीं करना चाहिए कि मुझे भगवान की ये कृपा चाहिए और ये कृपा नहीं चाहिए। जैसे महाप्रसाद में भेद नहीं करते कि चावल का महाप्रसाद हो या खीर का महाप्रसाद, दोनों स्वीकार किया जाता, एटलीस्ट होना चाहिए ऐसे। तो भगवान की कृपा जिस भी रूप में आए, भक्त वो है जो हाथ जोड़ के स्वीकार करता है, कृष्ण आप कितने दयालु हो, आपकी दया है मेरे ऊपर, आपकी दया है, आप ये दुख भेज रहे हो, ये मेरे पूर्व विगत कर्मों का फल है, मेरे कर्मों के कारण तो मुझे और भी ज़्यादा दुख भुगतने थे, लेकिन आप कितने दयालु हो, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा दुख दे रहे हो, कंसेशन। जैसे कोर्ट में कई बार जज सजा देते हैं किसी कैदी को, किसी क्रिमिनल को, अपराधी को सजा दी जाती है, और अगर कैदी स्वीकार कर लेते हैं अपने गुनाह को तो उसको बहुत कम सजा दी जाती है। तो ऐसे जो भक्ति के मार्ग पर आ जाता है उसको पूर्व जन्म का कर्म मिलता भी है तो बहुत थोड़ा मिलता है, और इसीलिए भक्त दुख आने पर भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान को धन्यवाद देता है कि कृष्णा आप बहुत दयालु हो, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं, आप बहुत दयालु हो। जो भक्त नहीं है, जो सच्चे भक्त नहीं है, वो दुख आने पे सोचने लगते हैं कि कृष्ण मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मैं हर रविवार कार्यक्रम में आया, ये फल दिया आपने, मुझे बीमार कर दिया, मुझे दुख दिया, और सामने वाला व्यक्ति कभी प्रोग्राम में नहीं आया, उसके पास सुंदर मारुति कार है, बंगलो है, और मेरे को दुख दिया। चलो हम अभी दूसरी जगह जाते हैं, दुर्गा देवी की सेवा करते हैं, जय माता जय भवानी। कई बार लोगों का विश्वास उड़ जाता है, लेकिन सच्चे भक्त है, यही तो परीक्षा है। परीक्षा क्या है कि जब भगवान गले लगाएं या भगवान ठुकरा दें, वो मेरे स्वामी हैं, भगवान मुझे सुख में रखें या दुख में रखें। आश्लिष्य वा पदरतम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतम करो तुवा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परः। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बताते हैं कि भक्त की क्या भावना होती है। वे कहते हैं कि भक्त वो है जो हर स्थिति में भगवान का हाथ देखता है, और अगर भगवान उसको गले लगाएं या ठुकरा दें, वो भगवान को धन्यवाद देता है। जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे परीक्षा भी आगे बढ़ती जाती है, और सच्चे भक्त भगवान के प्रति श्रद्धा को खोते नहीं हैं, बल्कि उनकी श्रद्धा और सुदृढ़ हो जाती है। इसका उदाहरण है महारानी कुंती, पांडवों की माता महारानी कुंती। उन्होंने कैसे दुख देखे, शायद संसारी व्यक्ति ऐसे दुख देखे तो वो आत्महत्या कर बैठे, नहीं, छोटी सी उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई, मतलब बच्चे छोटे थे और पति की मृत्यु हो गई, बच्चे भीमसेन अर्जुन युधिष्ठिर उनको बड़ा किया, उन्होंने बड़ा करने का प्रयास करते समय दुर्योधन और दूसरे कौरव भीम को जहर देने का प्रयास करते, वारणावत अग्नि में जलाने का प्रयास करते, 12 भरी सभा में उनके बहू द्रौपदी की बेइज्जती की गई, 12 साल के लिए उनको वनवास में भेजा गया बिना कारण के। वनवास में किसको भेजा जाता है जिसको कोई सजा होती है, पांडवों का कोई दोष नहीं था। कैसी कैसी विपत्ति सहन की, कुंती महारानी ने अपनी आंखों से देखा पांडवों और कौरवों का युद्ध, जहां पर 5 पांडव भी हैं और दूसरी तरफ कर्ण भी है जो उनका ही पुत्र था। ये सब कष्टों को उन्होंने सहन किया, और ये सब कष्टों को सहन करते हुए कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, विपद संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि हे भगवान कृष्ण आप मुझे और विपत्ति दो, मुझे और दुख दो, जिससे मैं आपका स्मरण कर सकूं। अगर दुख आएंगे तो आपका स्मरण ज्यादा होगा, और सुख में स्मरण नहीं होगा, मुश्किल होता है। इसीलिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे दुख दो। से हिंदी में कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में भगवान का स्मरण होता है, कष्ट में विपत्ति में हम जानते हैं कि कृष्ण के सिवाय कोई नहीं है। इसीलिए भक्त ये मानता है कि दुख ये भगवान की कृपा है, वो मुझे भगवान की ओर आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में अर्पण किया है। विशेष करके आज के श्लोक में जो मैत्र करुणा गुण बताया गया है, सबसे मित्रता करना और नम्र बने रहना हमेशा, ये गुण पाया जाता है वृंदावन के 6 गोस्वामियों में। आज से 500 साल पहले जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने धरती पे लीला की, स्वयं प्रकट होने से पहले, स्वयं प्रकट होने के साथ साथ उनके कई पार्षद भी आए और उनमें से प्रमुख थे वृंदावन के 6 गोस्वामी। वंदे रूप सनातन रघु युगौ श्री जीव गोपाल को। ये 6 गोस्वामी जो वृंदावन के महान भक्त हैं, ये महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन में रहकर सारे तीर्थों को खोज निकाले, क्योंकि भगवान कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले धरती की लीला को समाप्त करके वापस गोलोक वृंदावन चले गए और किसी को ये पता नहीं था कि भगवान की लीलाएं का स्थान कौन सा है, कहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, कहाँ पर भगवान की लीलाएं हुई। तो 6 गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से उन तीर्थों को खोज निकाला। ये 6 गोस्वामियों के नाम हैं श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये सब प्रकार से आदर्श थे। इनका व्यवहार के बारे में कहा जाता है, धीरा धीर जनप्रिय करो निर्मत सरो पूजितो। ये सबको प्रिय थे, धीर और अधीर। धीर का मतलब है जो इंद्रियां जिसकी वश में हैं, जो स्वभाव से बहुत कोमल है, वो धीर कहा जाता है। और अधीर का मतलब है जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं और जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, उसको अधीर कहा जाता है, या सरल शब्दों में बदमाश। अधीर मतलब बदमाश। तो जेंटल एंड रफियंस, जो अच्छे स्वभाव के थे और खराब स्वभाव के थे, दोनों के प्रति ये वैष्णव प्रेम दिखाते थे। एक साधु सबके अंदर भगवान कृष्ण को देखते हैं, इसलिए वो सबसे प्रेम कर सकते हैं। अगर कोई उनसे बुरा व्यवहार भी करता है तो वो साधु उनके प्रति बुरा व्यवहार नहीं करते। आज मैं इन 6 गोस्वामियों में से एक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ये मूलतः कर्नाटक से थे। इनके पूर्वज सर्वज्ञ और उनके पिता अनिरुद्ध, ये सब कर्नाटक से थे। लेकिन इनके पिता के पिता, दादाजी का भाइयों के बीच में मतभेद के कारण वो कर्नाटक छोड़कर बंगाल में रहने लगे, पूर्व बंगाल, जो कि आजकल बांग्लादेश कहा जाता है। वहाँ पर रूप और सनातन का जन्म हुआ, जेसोर डिस्ट्रिक्ट में। रूप और सनातन ये दोनों भाई थे और इनके छोटे भाई का नाम अनुपम या श्री वल्लभ था। ये तीनों भाई बहुत भक्ति में आगे बढ़े हुए थे। विशेष करके रूप और सनातन के बारे में कहा जाता है कि इनका व्यवहार इतना अच्छा था, ये सब शास्त्रों को जानने वाले थे और उस समय की सारी भाषाएं, संस्कृत, बंगाली, पर्शियन जो उर्दू भाषा है, क्योंकि उस समय बंगाल में मुसलमानों का राज्य था और वो सभी भाषाओं को अच्छी तरीके से जानते थे। उस समय के राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह बादशाह अलाउद्दीन। नाम भी बड़ा था, उसके काम भी बड़े अधम थे। बहुत ही दुष्ट राजा था। उसने उड़ीसा में कई मंदिरों को तोड़ दिया था और जो भी व्यक्ति हिंद वैष्णव धर्म का पालन करता उसके ऊपर वो बहुत अत्याचार करते थे। नवाब हुसैन शाह को किसी ने बताया कि ये जो दो व्यक्ति हैं रूपो और सनातन, उस समय उनका नाम था संतोष और अमार। तो किसी ने उनको बताया अगर ये दोनों बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं और साथ साथ ये बहुत बुद्धिमान भी हैं, चतुर भी हैं, सब लोग बंगाल में इसका बड़ा आदर करते हैं, इसीलिए अगर आप इनको अपना मंत्री बना लोगे तो आपके राज्य को चलाने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये वैष्णव या हिंदू परिवार से हैं तो ये सबका आदर प्राप्त करेंगे और आपके लिए जो भी कार्य करना है बंगाल में वो करने में बड़ी आसानी होगी। तो नवाब हुसैन शाह ने रूप और सनातन को बुलाया और कहा कि मैं आपको मंत्री बनाना चाहता हूं, मेरे दो पोस्ट हैं, एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। अभी आजकल के कलयुग के जमाने में अगर किसी को ये पोस्ट ऑफर किया जाए तो वो आकाश में उड़ पड़ेगा, है कि नहीं? लोग कितना संघर्ष करते हैं एक एमएलए या एमपी बनने के लिए, और मिनिस्टर बनना तो हो यद गतवाना निवर्तनते, जैसे गोलोक मिलने की तरह है। जनरली मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनने तक लोग बूढ़े बन जाते हैं, 60-70 हो जाते हैं, और फिर जब तक या तो गोली लगती है या फिर मृत्यु हो जाती है तभी छोड़ते हैं, कोई अपने आप से छोड़ता नहीं है। नहीं? कभी कोई देखा है कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2 साल बोले भी कि अब मैं जब करने के लिए जा रहा हूँ वृंदावन, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ? बहुत कम होते हैं। अगर वो बोल भी रहा है तो कुछ और अंदर कारण होगा, शायद किसी ने धमकी दी होगी, तो सीट के नीचे बॉम्ब होगा। आजकल तो भरोसा नहीं, कहीं भी बॉम्ब हो सकते हैं, सावधान रहना चाहिए। हर समय गाना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपने सुना पिछले कुछ 15-20 दिन पहले मुंबई में कितने सारे दुर्घटनाएं हो गई, लेकिन एक चीज़ हमें सीखने को मिली कि भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, चाहे फर्स्ट क्लास बोगी में भी क्यों ना हो। कोई सेफ नहीं है, जो लोग कम पैसे करके सेकंड क्लास में जा रहे थे उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो 4 गुना पैसा करके फर्स्ट क्लास में जा रहे थे उनको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिल गया। हमारे एक भक्त वहीं पर उसी बोगी में थे और वो जप कर रहे थे, लेकिन ऐसे उसे जप कर रहे थे या नरसिंह प्रेयर बोल रहे थे और करते करते उनको थोड़ी झपकी आ गई नींद से और सिर थोड़ा नीचे हुआ और उसी समय बम फट गया और दुर्भाग्यवश बहुत लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन जो उसके स्पार्क्स जा रहे थे बॉम्ब्स के अलग अलग जिसको लगता उसकी मृत्यु हो रही थी, क्योंकि उनका सिर झुक गया तो ये बच गए। और जब उनकी आंखें खुली तो उनके गोद में 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, 2 लाशें थी। तो मुझे इसे समझ में आया कि अगर सोते सोते भी जप कर रहे हैं तो इतना लाभ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोते सोते कर ही लें, लेकिन भगवान का नाम रक्षा कर रहे, उसके लेफ्ट में राइट में 2 व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई और वो बीच में बैठे हैं और उनकी रक्षा होगी। इससे सिद्ध होता है कि अगर कृष्ण चाहे तो रक्षा करते, अगर कृष्ण चाहे तो मृत्यु होती। anyway, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि इस दुनिया में कोई सेफ स्थान नहीं है, कहीं पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं सुरक्षित हूं, अब मुझे कोई भय नहीं है। वो एक ही स्थान है जहां पर भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं या कथा हो रही है, यहाँ पर हरि कथा हो रही है या भक्त लोग उत्साह से जोर से गा रहे हैं हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही सुरक्षित स्थान है, वो सेफ है। ये भगवान की दया थी कि इतनी घटनाओं में भी जो एटलीस्ट इस्कॉन के भक्तों की रक्षा हुई, जहां तक मैंने सुना किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी है, भगवान रक्षा की। और हम प्रार्थना करते हैं उन जीवों के लिए भी जिनके प्राण चले गए। एनीवे, ये दूसरा ही विषय है, शाम को इस पे चर्चा है। लेकिन रूप और सनातन मंत्री नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो संसारी चीज़ों से दूर रहना चाहते थे, और मंत्री बनना वो भी किसका, नवाब हुसैन शाह का, कितना खराब लगता है नहीं, अगर मैं बताऊं कि मैं पूरे जन्म में औरंगजेब का मंत्री था तो लोग कीचड़ फेंकेंगे, नहीं लोग मारेंगे, अरे कितना मूर्ख आदमी है, नहीं मंत्री बने भी तो किसके, नहीं तो रूप सनातन को मंत्री बनने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा हम नहीं बनेंगे मंत्री, लेकिन नवाब हुसैन शाह ने धमकी दी, अगर आप मंत्री नहीं बनोगे तो हम हिंदुओं पे और अत्याचार करेंगे और वैष्णव धर्म का पालन करना सबके लिए बहुत मुश्किल कर देंगे। तो रूप सनातन ने हाथ जोड़ के कहा ठीक है हम स्वीकार करते हैं, और वो उन्होंने पोस्ट को स्वीकार किया। नवाब हुसैन शाह ने उनका नाम भी बदल दिया, एक का नाम रखा दबीर खास और दूसरे का नाम रखा साकार मल्लिक, ये नवाब हुसैन शाह का दीक्षा कार्यक्रम था, वेरी डिमोनियक दीक्षा। और नवाब हुसैन शाह के गाइडेंस में वो लोग कार्य करते, मन ही मन पछताते रहते कि हमारे कैसे कर्म है कि हमें इस दुष्ट राजा के एक मंत्री बनना पड़ रहा है। वो घर में जब लौटते तो राधा मदन मोहन की सेवा करते, घर में उन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया हुआ था जहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड निर्माण किया था, और हमेशा भगवान से रो रो कर प्रार्थना करते कि हमको इस दुष्ट राजा के चंगुल से मुक्त करो। तो कुछ समय बीत गया, जिस नगर में वो रहते थे उसका नाम था रामकेली, ये राजधानी थी नवाब हुसैन शाह। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथ पुरी में रह रहे थे, और एक दिन वो भक्तों से कहने लगे कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, पहले मैं बंगाल जाऊँगा अपनी माता को मिलने, शची माता को, और फिर वहाँ से वृंदावन। तो जब वो वृंदावन की ओर निकले, चैतन्य महाप्रभु की शरीर इतना सुंदर था कि उनको देखते ही लोग पागल हो जाते, जो भी उनको देखता वो सब कुछ छोड़कर उनके पीछे दौड़ने लगता। महाप्रभु को देखकर 100,000,00,000,000,000 लोग उनके पीछे भागने लगे और जोर से गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी तादाद में लोग जा रहे थे कि चलने के लिए जगह नहीं थी, जंगलों से गुजर रहे थे, पेड़ों को काट करके रास्ता बनाया जा रहा था, और महाप्रभु को सुध नहीं थी अपने शरीर की, वो कृष्ण प्रेम में मग्न थे, हरि नाम कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जब वो रामकेली में पहुंचे नवाब हुसैन शाह के राज्य में, तो उनके सैनिकों ने समाचार दिया नवाब को कि आपके राज्य में एक सन्यासी आए हैं और उनके प्रभाव से लाखों लाखों लोग हरि का नाम कीर्तन कर रहे हैं, न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी गा रहे हैं हरि हरि, इस तरह सब लोग हरि का नाम ले रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। नवाब हुसैन शाह थोड़े अलर्ट हो गए, सावधान हो गए, उन्होंने अपने एक पुलिसमैन को बुलाया जिसका नाम था केशव खान। केशव खान जो है वो अच्छे परिवार से थे, उस समय कई बार खान सरनेम कॉमन था हिंदुओं में भी मुसलमानों में, और ये वैष्णव थे, उनको भगवान से बहुत प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु से। तो केशव खान से उन्होंने पूछा, मैंने सुना है मेरे राज्य में एक सन्यासी आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य, क्या उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? तो केशव खान घबरा गए, वो सोचे अगर मैं बताऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत तकलीफ देंगे, इसलिए उन्होंने कहा ये श्री कृष्ण चैतन्य ये साधारण सन्यासी है, फकीर है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इनके पीछे एक दो लोग घूम रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, नॉट फिट फॉर योर कंसिडरेशन, है ना। तो नवाब हुसैन शाह बहुत गंभीर है, बोले क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो, तुम श्री कृष्ण चैतन्य को साधारण सन्यासी समझ रहे हो? मेरे राज्य में मैं लोगों को तनख्वाह देता हूँ तब लोग मेरी नौकरी करते हैं, अगर मैं एक महीने तनख्वाह नहीं दूँ तो कोई नहीं आएगा, लेकिन ये सन्यासी किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे, खाने के लिए भोजन भी नहीं दे रहे और सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। आप इनको साधारण सन्यासी बोल रहे हो? मेरे मत में ये साधारण सन्यासी नहीं है। जिसको कुरान में खुदा कहा गया है और जिसको हिंदू कृष्ण या ईश्वर कहते हैं, वही है ये सन्यासी, श्री कृष्ण चैतन्य। सब लोग बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। मेरे राज्य में मेरी आज्ञा का पालन होता है, लेकिन इस व्यक्ति की आज्ञा का पालन सब ब्रह्मांडों में होता है, इसलिए ये भगवान है। और तुमने उनको साधारण सन्यासी कहकर बड़ा अपराध किया है। जो अपराध सबका करते थे वो दूसरों को सिखा रहे हैं कि अपराध क्या। गाय हत्या, ब्राह्मण हत्या कर रहे थे, वो अपराध नहीं था, लेकिन ये अपराध है। मैं आज्ञा देता हूं मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति इस सन्यासी का विरोध नहीं करे, और अगर किसी ने इस सन्यासी का विरोध करने का प्रयास किया तो मैं उसका सिर काट दूंगा। और नवाब ऐसे वचनों को हमेशा पूरा करते थे, इसलिए सब लोग सावधान हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे रामकेली के अंदर आने लगे, प्रवेश किया उन्होंने। रूप और सनातन गोस्वामी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि दिन के समय मिलने जाएंगे तो नवाब हुसैन शाह को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने रात के समय जब महाप्रभु बैठे हुए थे छिप कर गए। राज्य में उनको ऐसे कपड़े पहनने पड़ते थे जैसे मुसलमान दरबारों में पहने जाते हैं, अब वो छिप कर गए सादे कपड़े पहन के, गले में कपड़ा डाला नम्रता का, दांतों के बीच में तिनका रखा और साष्टांग प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, हाथ जोड़ के नम्रता से बोलने लगे, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दया माय, पतित पावन जय जय महाशय। हे श्री कृष्ण चैतन्य, हे दयामय भगवान, आप हमारे ऊपर दया करो। पतित पावन हेतु तुमार अवतार, आम बिन पतित न पाई बेयार। ये भगवान, आप तो पतितों का उद्धार करने के लिए आए हो, आप हमारे ऊपर दया करो। नीच जाति नीच संगी कोरे नीच कर्म, हम जाति से बहुत नीच हैं, हम बहुत गिरे हुए हैं, हम गोर ब्राह्मणों की हत्या करने वालों की नौकरी कर रहे हैं, इसलिए हमारे से बढ़कर पतित कोई नहीं है। हे गौरांगा, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आप हमें अपने चरणों में स्थान दो। हमने सुना है कि नवद्वीप में आपने जगाई और मदाई नाम के दो दुष्टों का उद्धार किया, लेकिन उनका उद्धार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जगाई और मदाई हालांकि दुष्ट थे, वे ब्राह्मण परिवार से थे, वो हमेशा नवद्वीप में रहते थे। हम लोग कभी कभी नवद्वीप या मायापुर जाते हैं यात्रा में, लेकिन जगाई मदाई हमेशा यात्रा में थे, हमेशा धाम में थे, वो भी लाभ था। और जगाई मदाई ने कभी वैष्णवों की निंदा नहीं की थी, कभी गाय और ब्राह्मणों की हत्या नहीं की थी, ब्राह्मणों की थी लेकिन गायों की नहीं की थी। और दूसरी बात, उन्होंने म्लेच्छों की सेवा नहीं की थी जैसे हमने की है। हम इस दुष्ट राजा की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारा उद्धार करोगे तो आपका नाम पतित पावन सिद्ध होगा। हम एक चीज बता रहे हैं कि हम आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। हमारे लिए आपकी कृपा प्राप्त करना ऐसा है जैसे एक बौने व्यक्ति के लिए चांद पकड़ना हो, असंभव है, लेकिन हम आपकी कृपा के अभिलाषी हैं, आप दया करो। मत्तुल्यो नास्ति पापी, मेरे समान कोई पापी नहीं है। अगर आप हमारा उद्धार नहीं करोगे, देखो तो आपको भी कोई दूसरा अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा उद्धार करने के लिए, इसलिए आप हमारा उद्धार करो। जब आप हमारा उद्धार करोगे तो आपका नाम होगा पतित पावन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। आप लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे तीन दिन से उपवास किया हो, जोर से बोलिए जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो रूपट सनातन की प्रार्थनाएं सुन के महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं। भगवान जब देखते हैं कि जीव नम्रता से उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। हम जब भी नाम जप करते हैं या विग्रह के सामने आते हैं, तो हमारे अंदर अगर अभिमान है, अगर हमारे अंदर गर्व है, तो भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन जब हम नम्र होते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, तब भगवान दया करते हैं। ब्लेसेड आर द हम्बल एंड द मीक, फॉर दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट का एक कहावत है कि जो नम्र है, तृणादपि सुनिचेन है, उसको भगवान का राज्य मिलेगा। जो अभिमानी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना, बहुत मुश्किल है। तो रूप और सनातन की प्रार्थनाओं को सुन के महाप्रभु उनको ऊपर उठाते हैं। उठो उठो, तुम मेरे नित्य सेवक हो, जन्म जन्म से। आज से मैं तुमको नाम देता हूं रूप और सनातन। यह अभी सेकेंड इनिशिएशन हो गया। रूप और सनातन, आप तो मेरे नित्य सेवक हो। आपने मुझे कई पत्र भी लिखे थे और मैंने उसमें से एक का जवाब भी दिया था कि जैसे कोई स्त्री जब कोई अपने पति के अलावा दूसरे से प्रेम करती है, तो अपने घर के कार्यों को इस तरीके से करती है कि पति को कोई शंका नहीं हो। ऐसे अपने कार्य को करते रहो और जब समय आएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा वृंदावन में। अब तुम अपने राज्य में वापस जाओ। रूप और सनातन वापस जाने से पहले महाप्रभु से बताते हैं कि इस राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी तो नवाब हुसैन शाह का मूड अच्छा है, लेकिन बोला नहीं जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल है वो। शास्त्रों में कहा गया राजनीतिज्ञ पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो गोमांस खाता है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो राजनीतिज्ञ और गोमांस भी खाता है उस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। और हाँ, आप वृंदावन जा रहे हो इतने सारे लोगों के साथ, ये ठीक नहीं है। लोग सोचेंगे आप जादूगर हो। आपको वृंदावन जाना चाहिए अकेले या कोई एक व्यक्ति को साथ लेकर। इतने सारे लोगों को लेकर जाओगे तो लोग सोचेंगे जादूगर है आप, किसका आपका मन कृष्ण में लगाना मुश्किल होगा। जब आप यहां मुड़ोगे 5-10 हजार लोग आपको देख रहे हैं, तो इसलिए आप अकेले जाना। और महाप्रभु रूप सनातन के जाने के बाद थोड़ी दूर और आगे जाते हैं। एक बहुत सुंदर जगह है, आप में से कुछ लोग गए होंगे, उसका नाम है कनाई नटशाला। चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं। वहां पर कृष्ण के बहुत सारे ड्रामा हुए थे, इसलिए उस जगह का नाम कनाई नटशाला है। चैतन्य महाप्रभु वहां पर बैठते हैं और फिर सोचते हैं, जो सनातन ने कहा था वो सही है, मुझे इतनी बड़ी संख्या में नहीं जाना चाहिए, मैं वापस जाता हूँ जगन्नाथपुरी, वृंदावन फिर कभी जाऊँगा। और महाप्रभु वहीं से वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद महाप्रभु फिर वृंदावन की ओर निकले और रूप गोस्वामी को संदेश मिला, तो रूप गोस्वामी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और निकल पड़े वृंदावन की ओर। और उन्होंने सनातन गोस्वामी के लिए कुछ पैसे दुकानदार के पास रखे, उनको पता था सनातन गोस्वामी को पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब सनातन को पता चला कि रूप गोस्वामी चले गए, तो उन्होंने सोचा मैं भी छोड़ता हूँ ये जॉब को, लेकिन उनके इस्तीफा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहाना किया कि मैं बीमार हूं, और बीमारी का बहाना करके घर में बैठ के श्रीमद् भागवत पढ़ने लगे। जैसे आपको यात्रा में जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही, तो क्या करना है, बीमार होना है। ये पहले भी था, आज भी है। तो बीमार हो गए, लेकिन नवाब हुसैन शाह बहुत होशियार थे, बुद्धिमान थे। उसने अपने डॉक्टर को भेजा राजवैद्य, और राजवैद्य ने देखकर कहा कि ये सनातन तो बड़े अच्छी हेल्थ में है, भागवत पढ़ रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो नवाब खुद आए, बोले सनातन ये क्या चल रहा है, तुम बीमार हो और यहाँ भागवत पढ़ रहे हो, तुमको मालूम नहीं है राज्य का कार्य, अगर तुम नहीं संभालोगे तो कैसे होगा, मैं उड़ीसा जा रहा हूँ लड़ाई करने के लिए, दूसरे लोगों को और तकलीफ देने के लिए, और तुम मेरे छोटे भाई के समान हो, तुम्हें मदद करनी चाहिए। सनातन बोले बस खूब ज्यादा नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए आपका राज्य, हरे कृष्ण आई रिजाइन। बोले नहीं नहीं आपको करना ही होगा, नहीं तो मैं सजा दूंगा। सनातन मुस्कुरा के बोले भगवान सबको सजा देंगे अपने अपने कर्मों के अनुसार। इनडायरेक्टली इसको बोल रहे थे कि तुमको सजा मिलेगी क्योंकि तुम इतने निर्दोष लोगों को तकलीफ देने जा रहे हो। नवाब ने तुरंत अपने मंत्रियों को बोला इसको जेल में डाल दो, और सनातन कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री से जेल के कैदी बन गए। नवाब हुसैन शाह तो चले गए, सनातन गोस्वामी को याद आया 10,000 सोने के सिक्के छिपा के रखे हैं। रूप गोस्वामी का लेटर आया कि ये पैसों का उपयोग करो, जेल कीपर को थोड़ा प्रेम दिखाओ पैसे का और बाहर निकलो। तो सनातन जेल कीपर को बोलने लगे सुनो अभी थोड़ी देर पहले मैं मंत्री था और तुम मेरे अंडर थे और मैंने तुमको बहुत मदद भी की थी, आज मैं जेल में हूं आप मुझे बाहर निकालो, मैं यहां से सीधा मक्का जाऊंगा। उसको बोल नहीं सकते वृंदावन जाऊंगा तो मक्का जाऊंगा, और आप तो सारे शास्त्रों को जानने वाले हो और ये लो 5,000 सोने के सिक्के। वो तो शायद शास्त्र पढ़ा ही नहीं होगा उसने, लेकिन वो खुश हो गया ये सुन के मैं सारे शास्त्र जानने वाला हूं। और जितने पैसे आए उतना उसकी कृपा भी बढ़ने लगी। वो बोला मैं आपको छोड़ दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन जब नवाब लौट के आएगा तो मेरे से पूछेगा कि सनातन को क्यों छोड़ दिया तुमने, तब मैं क्या जवाब दूंगा। उससे कहना कि मैं गंगा किनारे गया था शौच क्रिया के लिए, उसमें गिर पड़ा, बेड़ियों के साथ डूब गया, बहुत खोजा लाश भी नहीं मिली और डूब गया बह गया चलो, और ये लो 2,000 और सोने के सिक्के, तो और भी कृपा बढ़ गई। और तुरंत उसको जेल से मुक्त कर दिया, और सनातन दौड़ते हुए गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने वाराणसी। रास्ते में एक जमींदार था, उसके पास एक ज्योतिष ने बताया ये लोग जा रहे हैं इनके पास कुछ पैसे हैं। तो उसने सनातन को बुलाया, बोला ओ आप यहाँ पे रहो, आप थके हो गए आपको भोजन चाहिए यहाँ पर स्वीकार करो। सनातन मंत्री रह चुके थे, आप जानते हैं मंत्रियों को बहुत होशियार होना पड़ता है, चालाकी करनी पड़ती है। तो सनातन सोचने लगे पहली बार मिल रहा है और इतने अच्छी प्रेम दिखा रहे, जान न पहचान तू मेरा मेहमान, अति भक्ति चोरेर लक्षण। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा ईशान किचु द्रव्य आचे, आपके पास कुछ पैसे हैं। ईशान बोले हाँ मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। उसके पास 8 थे लेकिन बोला 7। तो सनातन बोले ये तो मृत्यु का फंदा है, ये पैसे लेके मत चलो लोग मारेंगे इसके लिए, ये लो पैसे जमींदार को दे दिए आप हमको पार लेके जाओ। जमींदार ने उनको पार लेके गए, और फिर सनातन ने फिर पूछा ईशान और पैसे हैं आपके पास। बोले हाँ 1 सोने का सिक्का है, उसने सेफ्टी के लिए रखा था, इन्हें रास्ते में कोई प्रसाद नहीं मिले तो थोड़ा पैसा होना चाहिए। तो सनातन बोले आप ये पैसे को लो और आप भी वापस जाओ, उसको वापस भेज दिए। और फिर वाराणसी पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु अंदर थे, कमरा बंद था। अपने चंद्रशेखर को बोला उन्होंने देखो दरवाजे के पास एक सन्यासी आए हैं उनको अंदर बुलाओ। चंद्रशेखर बाहर गए और देखा दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं, खाली सनातन थे लेकिन उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, काले कपड़े मुसलमानों की तरह पहने हुए थे क्योंकि वो जेल से भागे हुए थे कैदी थे। और रास्ते में मुश्किल से कभी 2-3 दिन में एक बार कुछ खाने को मिलता, बहुत पतले हो गए थे। तो चंद्रशेखर बोले बाहर कोई नहीं है, कोई तो होगा एक मुसलमान दरवेश है फकीर, उसको बुलाओ अंदर बुलाओ। और जैसे सनातन अंदर आए महाप्रभु दौड़े उनको गले मिलने, और सनातन बोले मुझे मत स्पर्श करो मैं बहुत पापी हूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले मैं आपको स्पर्श कर रहा हूं आत्मशुद्धिकरण के लिए, आंखों की सफलता है आपको देखने में, स्पर्श इंद्रिय की सफलता है आपको स्पर्श करने में, और जीवा की सफलता है आपका गुणगान करने में। सनातन को गले लगाया उन्होंने और भक्तों से कहा कि इनको अच्छे कपड़े दो, इनको एक उनके बाल भी बहुत लंबे हो गए थे, बोला मेक ही माई जेंटलमैन का सज्जन बनाओ। फिर सनातन ने अपने बाल सब शेव किए और फिर चैतन्य महाप्रभु से उपदेश ग्रहण करने आए। महाप्रभु बहुत खुश थे सनातन से, लेकिन सनातन के पास एक नया ब्लैंकेट था, कंबल, जो उनके बहनोई ने रस्ते में दिया था। महाप्रभु उसको देखकर घूर रहे थे कि ये क्या है, बाकी सब तो सादे वस्त्र और एक नया सिल्क का ब्लैंकेट। सनातन तुरंत समझ गए और बाहर जाके एक धोबी को वो नया ब्लैंकेट दे दिया और पुराना पहन के आए, उसका फटा हुआ पहन के आए। तो महाप्रभु बड़े खुश हुए, बोले अब मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि तुम्हारी बीमारी का हर लक्षण दूर हो गया। आप तो मधुकरी करने जा रहे हो, भीख मांग के अपना जीवन निर्वाहोगे सन्यासी के रूप में, और आप नया नया कंबल पहन के जाओगे तो लोग सोचेंगे ये कैसा भिखारी है, अमीर भिखारी है, तो कोई कुछ नहीं देगा। फिर सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा, के आमी, मैं कौन हूं, केने जापत आपत रहे, तीन प्रकार के दुख मुझे क्यों आ रहे हैं। ग्राम में व्यवहार है, पंडित कोरी मानी आपन और हित हित ना जानी। मेरे को ग्राम के व्यवहार से लोग बोलते हैं आप बहुत पंडित हो, बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं तो अपना हित भी नहीं जानता, मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी दिखा रहे हैं कि शिष्य को स्वीकार करना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। और फिर महाप्रभु ने उपदेश दिया, महाप्रभु बोले जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव है वो कृष्ण का दास है, और दुख भुगत रहे क्योंकि वो कृष्ण को भूल गए हैं। 2 महीने तक गंगा के किनारे वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश किया, जो आप श्रील प्रभुपाद के पुस्तक चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में पढ़ सकते हैं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो हिंदी और मराठी में भी अनुवाद हुआ है। इसके बाद महाप्रभु बोले आप वृंदावन जाओ, सनातन गोस्वामी वृंदावन गए। वहां पर वो एक घर में गए और उन्होंने देखा कि एक भक्त अपने ड्यूटीज को, मदन मोहन को डांट रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी बोले कि भगवान को डांटना नहीं चाहिए, बड़े आदर से पूजा करनी चाहिए। तो अगले दिन स्वप्न में भगवान आए, बोले सनातन अब आप ही मेरी सेवा करो, क्योंकि आपने उसको बोल दिया ऐसे, अब वो मुझे डांट नहीं रहा, अब आप ही मेरी सेवा करो। तो अगले दिन जब सनातन उस घर में गए तो उस ब्राह्मण ने वो मूर्ति सनातन गोस्वामी को दी, मदन मोहन मूर्ति, और कहा अब आप ही सेवा करो, भगवान की यही इच्छा है। भगवान सनातन गोस्वामी से बातचीत करते, सनातन गोस्वामी बोले आप मेरे साथ रहोगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सूखी रोटी लेता हूं। भगवान बोले ठीक है, जो भी दोगे आप मैं स्वीकार करूंगा। जनरली भक्त बोलते हैं जो भी दोगे मैं स्वीकार करूंगा। कुछ दिनों बाद सनातन रोटी देते, चावल और आटा पानी मिक्स करके, थोड़ा बाटी बाटी बोलते। तो एक दिन भगवान बोले, जस्ट 5 मिनट्स, भगवान उनसे बोले कि भगवान उनसे कहने लगे कि सुनो सनातन, आप रोटी दे रहे हो, थोड़ा सा नमक ये शक्कर साथ में दे दो। तब सनातन बोले देखो पहले ही आपको मैंने बताया था, अब आप नमक मांग रहे हो, कल आप मिठाई मांगोगे, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो सनातन इसी तरह सेवा करते। फिर एक अमीर व्यापारी ने आकर मदन मोहन मंदिर बनाया, जो कि बहुत सुंदर मंदिर है, आपने देखा होगा। इस तरह सनातन गोस्वामी आदर्श थे, वो सबसे प्रेम करते, जैसे आज के श्लोक में बताया गया है, मैत्र करुण एवच। वो घर घर में जाके ब्रजवासियों से पूछते थे आपके घर में लोग कैसे हैं, सब ठीक है कि नहीं, हाँ आपके घर में खेती कैसे हो रही है। कहीं पति पत्नी का झगड़ा होता तो पति बोलते इसने ऐसा बोला, पत्नी बोलते ऐसा बोला, फिर सनातन जो भी बोलते वो दोनों स्वीकार करते। सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते, वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते, 28 किलोमीटर, छोटी नहीं बड़ी परिक्रमा। और एक दिन भगवान स्वयं बोले सनातन तुम बूढ़े हो गए अभी मत करो। सनातन बोले नहीं मैं करूंगा। तो भगवान ने स्वयं उनको एक गोवर्धन शिला दी जिसपे उनके चरणों के निशान थे, और कहा कि इसकी आप 4 बार परिक्रमा करो तो आपको वही फल मिलेगा जो पूरी परिक्रमा का फल होता है। इस तरह सनातन गोस्वामी ब्रज में बहुत प्रसिद्ध हो गए। वो चकलेश्वर महादेव के पास रहते गोवर्धन में, और मच्छर बहुत आ रहे थे उस समय, आने में ऑल आउट या मस्किटो नेट्स नहीं होते थे। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं आप छोड़ के चला जाऊं, लेकिन शिवजी स्वप्नों में आए, बोले सनातन चिंता मत करो, तुम गोवर्धन छोड़ के मत जाओ। सनातन बोले मच्छर आ रहे हैं, मैं लिख नहीं सकता किताब, आप यहीं रहो, 2 दिन मुझे समय दो। तो रात के समय शिवजी ने मच्छरों के इंचार्ज देवता को बोल दिया, कल से कोई मच्छर वहां नहीं जाएगा, आज भी आप जाओ गोवर्धन में, उस इलाके में कोई मच्छर नहीं आता। बहुत अच्छी जगह है, एकदम शांत। सनातन गोस्वामी मधुकरी करके अपना जीवन बिताते थे, सरल जीवन, आदर्श जीवन। एक बार सनातन के पास कोई व्यक्ति आया, मैंने सुना तुम्हारे पास बड़ी मणि है, पारस मणि, इसको स्पर्श करते ही सब कुछ सोना बन जाता है। सनातन बोले, हाँ है, कहां पर है? वो देखो उधर है। कहां पर? वो कचरे के डिब्बे में। तो सनातन गए, वो व्यक्ति गए और मणि को निकाला। अब बहुत खुश हो गए कि मेरे को पारस मणि मिल गई, जिसको स्पर्श करो सब सोना। फिर वो सोचने लगे, इतनी इतनी मूल्यवान चीज है पारस मणि, सनातन ने फेंक क्यों दिया उसको? तब वो समझ गए, सनातन के पास गए, बोले कि आपने ये मणि को फेंक दिया, इसका मतलब आपके पास इससे ऊंचा कुछ है क्या? इससे भी अच्छी मणि होगी, कोई एक जॉब छोड़ रहा है मतलब इससे बड़ा जॉब मिल रहा है उसको। सनातन से पूछा, आपके पास कुछ है? सनातन बोले, है। कहाँ है? वो चाहिए मुझे। सनातन बोले, पहले ये पारस मणि को फेंक दो। तो व्यक्ति सोच रहे थे, ये फेंक दो और इधर कुछ मिलेगा कि नहीं, पहले ये आना चाहिए फिर वो छोड़ेंगे, ये फेंकूं कि नहीं फेंकूं। कि उन्होंने साधु पे भरोसा किया और पारस मणि को फेंक दिया यमुना में हमेशा के लिए, ऐसे नहीं कि छुपा के रखा, अगर इधर नहीं मिला तो उधर। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं आपको असली मणि दे रहा हूं और वो है हरे कृष्णम, हरे कृष्णम कृष्णा कृष्णम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बस तो सनातन गोस्वामी इस तरह से आदर्श वैष्णव थे। समय हो गया, मैं 5 मिनट में अंत करूंगा। और गुरु पूर्णिमा के दिन, जो आज से पिछली बार जो पूर्णिमा है 11 जुलाई को, उस दिन सनातन गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, वापस भगवान के धाम लौट के आते हैं। बहुत सारे, एक बार तो कहानी ऐसी भी है कि भगवान ने सनातन के लिए एक कुआं भी खोदा, उनको प्यास लगी थी। आज आप वृंदावन में जाओगे तो बहुत जगह दिखाई पड़ेंगे। सब गोस्वामियों का एक गुण था कि हमेशा भगवान के कीर्तन में लगे रहते, कृष्ण कीर्तन गान रतन परो, नाम कीर्तन में। क्योंकि कलयुग में युग धर्म है नाम कीर्तन। सनातन गोस्वामी ने कई किताबें लिखी, बृहद भागवत अमृता दशम टिप्पणी कृष्ण लीला स्तव, बहुत सारे किताबें लिखी ग्रंथ, और उन सब ग्रंथों का सार है कि कृष्ण का नाम सच्चे दिल से पुकारना, जप में और कीर्तन में। सवेरे के समय हम जप करते हैं माला पर, और जब हम बड़े समूह में आते हैं तो कीर्तन करते हैं। तो ये हमारी परंपरा में है कि करताल मृदंग और हारमोनियम के साथ हम श्री कृष्ण संकीर्तन में भाग लें। हिज ग्रेस अनंत निताई प्रभु, इन्होंने बहुत पिछले 5-6 वर्षों से वे इस कीर्तन और जो कीर्तन के साथ जो वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें बहुत मेहनत से रिसर्च किया है, और उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जो कि हारमोनियम के विषय, भगवान की सेवा में किया जा सकता है। यही हारमोनियम से आप फिल्मी गीत गा सकते हैं, और यही हारमोनियम से आप कृष्ण नाम लेकर गोलोक वृंदावन धाम की यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट में ये आपको समझाया जाएगा। चाहूँगा सनातन गोस्वामी के बारे में कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णु न अमानी न मानदे न कीर्तनी, सबसे इम्पोर्टेंट है नम्र बनना, जो कि बहुत मुश्किल भी है, बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल। तो सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं ही वॉज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता के परफेक्ट उदाहरण थे। यहाँ तक कि एक बार भगवान महाप्रभु ने बुलाया, सनातन इधर आओ, उनको बुलाया और वो दौड़ते हुए आए, लेकिन मेन रास्ते से नहीं, समुद्र के किनारे से, जहाँ पर गरम गरम रेती थी। जगन्नाथपुरी में रेती बहुत गर्म होती है मई के महीने में, उनके पैर जल गए। महाप्रभु ने पूछा, आप यहाँ से क्यों आए? सीधे रास्ते से आते, ठंडा रास्ता था। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, वो मेरे को देखते तो अपवित्र हो जाते, ऐसा उनको लगता था कि मैं बहुत अपवित्र हूं, मैं बहुत पतित हूं। भक्ति में और संसारी चीज़ों में यही अंतर है कि भक्ति में व्यक्ति हमेशा यही सोचता है मैं पतित हूँ, और जितना हम अपने आप को पतित मानते हैं उतना भगवान की कृपा जल्दी मिलती है। इसलिए सनातन गोस्वामी के चरणों में सब लोग 2 मिनट आँख बंद करके प्रार्थना करें कि हमारे अंदर ये गुण आ जाए त्रिनादपि सुनिचेन का, जिससे हम भी शुद्ध रूप से भगवान राधा और कृष्ण के नामों का जप और कीर्तन कर सकें। जय। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।